ओम शांति। हम सभी के मध्य आदरणीय मीना दीदी जी उपस्थित हैं। हम आपका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत। विभिन्न प्रतिभाओं की धनी आदरणीय मीना दीदी जी पिछले लगभग 28 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं एवं समर्पित रूप से अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप उरई सेवा केंद्र पर उपस्थित होकर के वहां की विभिन्न आत्माओं को ज्ञान से उत्प्रोत कर रहे हैं और अन्य अनेक स्थानों पर रहकर के आपने अनेक आत्माओं का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किया। कानपुर, हमीरपुर, शिकोहाबाद, अनेक स्थानों पर रहकर के आपने अपनी प्रतिभाओं के द्वारा उन आत्माओं को परमात्मा के साथ मिलन कराया, लाभान्वित किया। आज हम सभी के मध्य उपस्थित हैं उन्हीं ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए आदरणीय मीना दीदी जी।
ओम शांति। बाबा के हम सब कल्याणकारी बाबा के हम सब बच्चे भी कल्याणकारी हैं, क्योंकि जब हमारा पिता कल्याणकारी है तो हम बच्चे भी क्या होंगे, कल्याणकारी होंगे। और ऐसे कल्याणकारी समय में हम तो ये कहेंगे कि ये समय भी कल्याणकारी है। और इस कल्याणकारी समय में अपने भाग्य को बनाना, अपने भाग्य को जगाना, ये और ही कल्याणकारी है। तो बाबा ने हम बच्चों को ऐसा समय दिया है और समय के बारे में बाबा समय प्रति समय हम बच्चों को पहचान देते रहते हैं। वैसे तो बाबा ने हमें बहुत सारी बातों की पहचान दी है, स्वयं की पहचान, स्वयं परमात्मा पिता की भी पहचान, ड्रामा की भी पहचान, समय की भी पहचान। अब ये जो हमें समय की पहचान मिली है, ये सारी पहचान मिली है, तो इन सारी पहचान को हम अपने जीवन के अंदर कितना लागू करते हैं। पहचान मिलने के बाद ब्राह्मण जीवन के अंदर उसे प्रैक्टिकल जीवन में लाना, इससे हमारी स्वयं की पहचान बन जाती है। तो स्वयं की पहचान को बनाने के लिए जितने भी हमें पहचान मिली है, एक एक पहचान को अपने जीवन में हम उतारे कैसे, और इस समय के पहचान में सबसे बड़ी पहचान होती है कि हमने बाबा को पहचान लिया, स्वयं को पहचान लिया, और लेकिन अपने भाग्य बनाने को भी हमने पहचान तो लिया है, लेकिन इस पहचान को हमने अपने जीवन के अंदर क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, कम कर दिया है। जितना हम बाबा को अच्छी तरह पहचानते हैं उतना हम शायद स्वयं को इतना अच्छी तरह से नहीं पहचान पाए हैं, या हम यूं कहें कि समय को हम इतना अच्छी तरह से नहीं पहचान पाए हैं। तो आज हमें आपको यही बताना है कि ये समय कौन सा चल रहा है, क्योंकि ये संगम युग कल्याणकारी युग, ये समय कल्याणकारी युग है। तो इस संगम युग में समय में अपने समय को हम कितना सफल करते हैं। कहा जाता है कि अगर समय को हम सफल करना नहीं जानते तो जीवन भी हमारा अधूरा रह जाता है, और उस समय के लिए हम कितनी सारी बहानेबाजी बनाते हैं, क्या करें समय नहीं मिलता, क्या करें समय ऐसा है, क्या करें ऐसा समय हमको मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो समय के बारे में हम कितना बहाना बनाते रहते हैं। और कहा यह जाता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बातें बनाना जानता है तो जीवन में कुछ बना नहीं पाता। जो जीवन में बहाना बनाता है तो वो जीवन को बना ही नहीं पाता, क्योंकि उसका समय बातें बनाने में ही चला जाता है। तो हमें ये देखना है कि कहीं हमारा ये संगम युग भी ऐसी बातों में तो नहीं जा रहा है। ब्राह्मण बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन हमारा समय कहाँ कहाँ जाता है? व्यर्थ बातों में, व्यर्थ सुनने की बातों में, लोगों के संग में बैठ करके अपने समय को बिताना, तो ये सारा समय हमारा क्या हो रहा है? व्यर्थ ही तो जा रहा है। तो संगम युग में ये जो हमें समय मिला है ये बहुत कीमती समय है, और इस कीमती समय में अपने जीवन की कीमत को हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर ये समय हमारे हाथ से निकल गया, कहते हैं मनुष्य के जीवन में चार प्रकार के टीचर होते हैं। पहला टीचर होता है स्वयं। जब हमसे कोई गलती होती है, कोई भी बातें ऐसी आती है, तो हमारे अंदर मन जरूर कचोटता है कि हमसे ये गलत हो गया, लेकिन जानते हुए भी इसको हम इग्नोर कर देते हैं। माना इस टीचर को हमने इग्नोर कर दिया, स्वयं टीचर। और जो दूसरा टीचर होता है वो है परमात्मा पिता, बाबा। तो बाबा ने भी हमें समय प्रति समय कितनी शिक्षाएं दी है, उन शिक्षाओं को जानते हुए भी हम समय प्रति समय इग्नोर कर देते हैं, कई जगह पर इग्नोर करते रहते हैं। तीसरा टीचर होता है परिस्थिति। जब मनुष्य के जीवन के अंदर कोई परिस्थितियां आती है तो उस परिस्थिति के कारण से हम कुछ जागते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, लेकिन जैसे ही वो परिस्थिति हमारे मुताबिक हो जाती है तो हम फिर जैसे कि तैसे ही हो जाते हैं। तो इस टीचर को भी हमने इग्नोर कर दिया। चौथा टीचर होता है समय। जब मनुष्य का कहा जाता है कि जब मनुष्य का समय आ जाता है ना, तो क्या कहते हैं कि समय इसका अभी आया नहीं है, ये तो बदलेगा ही, अभी इसका समय नहीं आया। क्योंकि समय मनुष्य को शाम दाम दंड भेद कैसे भी करके व्यक्ति का परिवर्तन करके ही मानता है। तो हम अपने समय को, अपने स्वयं से अपने समय को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, या समय हमारे जीवन का परिवर्तन करेगा तो हम परिवर्तित होंगे। कईयों के मन में आता है, ब्राह्मण परिवार के अंदर ही कईयों के मन में आता है कि जब ऐसा समय आ जाएगा, जब अंत का समय आ जाएगा तो हम अपना परिवर्तन कर लेंगे। समय तो आने दो, अभी समय नहीं आया। तो हम समय का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि समय ऐसा आएगा तो हम कर लेंगे। लेकिन जब वो समय आएगा तो आप करें या ना करें, समय तो हमारे जीवन को क्या करेगा? बदल के ही मानेगा। तो समय रहते अपने भाग को बना लेना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि समय रहते। कहते एक कहानी है कि एक बार एक राजा था, उसकी चार रानियां थी। पहली रानी थी जो ज्यादा सुंदर नहीं थी और ना इतनी गुणवान थी, लेकिन वो राजा का ख्याल बहुत रखती थी हमेशा। जो दूसरी रानी थी तो वो ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन बुद्धि उसकी अच्छी थी। तो समय प्रति समय वो राजा को डायरेक्शन देती रहती थी और राजा उससे डायरेक्शन लेता भी रहता था। जो तीसरी रानी थी वो सुंदर थी, लेकिन इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन चलायमान थी। तो राजा को हमेशा ये डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और की हो जाए, इसलिए राजा किसी को जल्दी मिलाता नहीं था। और जो चौथी रानी थी वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, और राजा उसको बहुत समय भी देता था, उसको साथ ले जाना करना, उसी के संग ज्यादा रहता था। एक दिन क्या हुआ कि उस राजा की हालत खराब हो गई। जब राजा की हालत खराब हुई, उसको लगा कि कहीं मेरा अंत तो नहीं आ गया, मैं चार चार रानियों के साथ सारा जीवन मैंने बिताया, चार चार रानियों के साथ, तो कहीं ऐसा ना हो कि अंत के समय एक भी रानी मेरे साथ ना हो, तो चलो मैं अपनी रानियों से पूछ लेता हूँ कि तुम मेरा साथ दोगी। तो सबसे पहले राजा ने उस चौथी रानी से पूछा, जिसके साथ राजा पूरा समय बिताता था। राजा ने उससे पूछा कि देखो, तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ति करता रहा हूँ, जो तुम कहती रही वो मैं करता रहा हूँ, तुम्हारे को मैंने सबसे ज्यादा समय दिया है, जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो क्या तुम भी मेरे साथ चल सकती हो? तो उस रानी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चल सकती, भले तुमने मेरा साथ बहुत दिया है लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चल सकती। राजा को बहुत दुख हुआ कि जिस रानी को मैंने इतना समय दिया, इतना वक्त दिया, और यही रानी आज मुझे धोखा दे रही है। उसने फिर दूसरी तीसरी रानी को बुलाया, जो सुंदर थी लेकिन उसको डर रहता था कि कहीं ये धोखा देकर ना चली जाए। तो राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरा साथ दोगी? उसने कहा, देखो राजा, तुम तो पहले से डरते थे कि ये कहीं किसी और की ना हो जाए, तुम जैसे ही शरीर छोड़ोगे तो मैं किसी और की हो जाऊंगी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। उसने दूसरी रानी को ट्राई किया, उस जो कभी कभी वो सलाह देती थी, उसने उससे पूछा कि क्या तुम मेरा साथ दोगी? उसने कहा, देखो मैं तो वैसे भी तुम्हारी नहीं रही, केवल सलाह देने के लिए तुम्हारी बनी रही हूँ, और जब तुम चले जाओगे तो सलाह देने ना देने का कोई प्रश्न ही नहीं आता है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती हूँ। पीछे से चौथी जो पहली रानी थी, जो सुंदर नहीं थी और राजा उसको वक्त भी नहीं देता था, तो पीछे से वो चिल्लाने लगी, बोली, राजन मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी मददगार मैं हमेशा रही हूँ और अभी भी मैं तुम्हारी मददगार बनकर रहूंगी। अब ये चार रानियां कौन सी है, ये कहानी नहीं है, ये चार रानियां कौन सी है? सबसे पहली रानी है संस्कार, और दूसरी रानी है मित्र संबंधी, तीसरी रानी है धन, और चौथी रानी है ये शरीर। ये चार रानियां हैं। तो जो पहली रानी सुंदर, जो चौथी रानी सुंदर थी, वो ये शरीर है। हम लोग अपना सारा समय अधिकतर किसमें देते हैं? किसमें देते हैं? देह में ही, इसको ही संभालना, सुधारना, खिलाना पिलाना, इसको ही तो समय देते हैं। ज्यादा समय हमारा किसमें जाता है? इसी चौथी रानी में ही जाता है। और जब आत्मा निकलती है शरीर से, तो पहली रानी ये शरीर ही हमें धोखा दे देता है। ये शरीर हमारे साथ नहीं जाता, ये शरीर हमें साथ नहीं देता, इसको हम इतना समय देते हैं, इतना वक्त देते हैं, इस शरीर की पूर्ति के लिए हम क्या क्या करते, इच्छा पूर्ति के लिए जो चाहिए उसकी इच्छा पूर्ति करते रहते, सारा जीवन हमारा किस में चला जाता, इच्छा पूर्ति में ही, शरीर की पूर्ति में ही, और यही रानी हमें साथ नहीं देती, और इसके साथ ही हम जीवन गुजारते हैं। जो तीसरी प्रकार की रानी है, जिसने कहा था मैं किसी और की हो जाऊंगी, शरीर छोड़ने के बाद इस धन को क्या हम अपने साथ लेकर जाते हैं? ये धन भी किसी और का हो जाता है, ये हमारा रहता है? ये धन हमारा नहीं रहता, ये धन भी किसी और का हो जाता है,
जो हम डरते रहते हैं कोई हमारा छीन ना ले, कोई हमारा ले ना ले। सारा जीवन हम क्या करते हैं, धन को छुपा छुपा कर रखते हैं, कोई देख ना ले, कोई ले ना ले, कोई छीन ना ले। हमेशा हमको ये डर रहता है कहीं कहीं चला ना जाए। तो ये धन भी हमारे जाने के बाद क्या होता है, किसी और का हो जाता है। और जो तीसरी, जो दूसरी रानी है जिसने कहा था कि तुम केवल सलाह लेते थे, ये हमारे है मित्र संबंधी। इन मित्र संबंधियों से हम हमेशा क्या करते हैं, सलाह लेते रहते हैं। हाँ, उनसे पूछते रहते हैं ऐसा कर ले ऐसा कर ले, समय प्रति समय उनसे हम डायरेक्शन लेते रहते हैं। और शरीर छोड़ने के बाद सारे डायरेक्शन देने वाले लोग क्या होते हैं, चले जाते हैं, तो वो भी हमारा साथ नहीं देते हैं। अब जो पहली रानी है संस्कार, ये संस्कार ही हमें साथ देते हैं। अब इन ये संस्कार हमारे साथ साथ जाते हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते, जिसको हम ज्यादा महत्व नहीं देते, समय भी नहीं देते। ये संस्कार ही हमारे जन्म जन्म के साथ ही रहते हैं और ये साथ चलते हैं। भले देखने में इतने खूबसूरत नहीं लगते हैं, क्योंकि ये सारी चीज खूबसूरत हमें स्थूल में दिखाई देती है और संस्कार स्थूल में दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें संस्कार की तरफ ध्यान हमारा नहीं जाता। अब हमें क्या करना है, समय रहते अपने संस्कारों को दैवी संस्कार बनाना है, समय रहते, क्योंकि ये समय कल्याणकारी जो समय है संगम युग, इस संगम युग में ही हम अपने भाग्य को, अपने संस्कार को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग है। दूसरा, ये संगम युग कल्याणकारी क्यों है, क्योंकि इस संगम युग में हम आत्मा पतित से पावन बन जाते हैं, क्योंकि ज्ञान की गंगा कब बहती है, इसी संगम में ही बहती है। बाकी सारे कल्प में गंगा तो बहती है, लेकिन ज्ञान की गंगा एक कल्प में एक ही बार बहती है, और इसी ज्ञान की गंगा में आत्मा पतित से पावन बनती है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग है। दूसरा, ये संगम युग हमारी कमाई का समय है। इस संगम युग में हम कल्प कल्पांतर के लिए, वैसे तो 21 जन्म के लिए गारंटी है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, तुम बच्चों के लिए कल्प कल्पांतर के लिए ये कमाई का समय है, कमाई का समय। क्यों, संगम युग में हम इतना कमाते हैं जो सतयुग में बैठकर खाते हैं, वहां कमाना पड़ता है, वहां कमाना नहीं पड़ता, वहां बैठकर खाते हैं। सतयुग और त्रेता बैठकर खाते हैं। द्वापर युग में हम कमाते नहीं, कम है, और क्या करते हैं, जितना कमाते उतना खा लेते हैं द्वापर युग में। कलयुग में जब आते हैं तो हम कमाते कम है और खाते ज्यादा है, तो घाटे में चले जाते हैं। और जब किसी की दुकान घाटे पे जाती है तो क्या होता है, घबराहट होती है कि नहीं होती है, चिंता होती है कि नहीं होती है, दुख होता है, परेशानी आती है, समस्या आती है। खाएं हम ज्यादा कमाएं कम तो क्या होगा, घबराहट होगी ना, परेशानी होगी ना। तो कलयुग में हर आत्मा क्या है, इस समय जिसको देखो धन है, सब कुछ है, है गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, फिर भी क्या बोलता है, बड़ी घबराहट है, बड़ी बेचैनी है, हम डिप्रेशन में है, हमको बड़ी बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा है, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हमारा पता नहीं क्यों मन नहीं लगता, ये प्रॉब्लम है। क्यों है, क्योंकि कलयुग में हमने कमाया कम है और खाया ज्यादा। लेकिन संगम युग में फिर से भाग्य विधाता भगवान हमें कमाई करने का चांस देता है। अब इस संगम युग में हम कितनी कमाई करते हैं, कितने खजाने हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। खजाने में ज्ञान का खजाना कितना है, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, भाग्य का खजाना और समय का खजाना, ये सारे खजाने भगवान ने हमको दिए हैं। तो ये सारे खजानों से हम कितनी कमाई करते हैं। ज्ञान का खजाना, ज्ञान माना समझ, समझ के आधार से अपनी जीवन को हम कितना चलाते हैं, ये है हमारी कमाई। शक्तियों का हम कितना खजाना योग के माध्यम से स्टोर करते हैं, ये है हमारी कमाई। गुणों का खजाना कि श्रेष्ठ सेवाओं से, श्रेष्ठ कर्म से हम गुणों के खजाने को कितना कमाते हैं, ये हमारा गुणों का खजाना, और इसी से हमारा भाग्य बनता है। तो भाग्य भी एक खजाना है, ये भाग्य का खजाना हमने कितना स्टोर किया। और फिर चौथा खजाना है समय, अपनी सेवाओं को, अपने समय को हम कितनी सेवाओं में सफल करते हैं, ये है हमारा समय का खजाना। तो ये सारे खजानों को अगर हम समय रहते बना लेते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, ये 21 जन्म तो गारंटी है, लेकिन सारे कल्प में ये कमाई हमारे साथ चली जाती है। और ये कमाई कहाँ होती है, केवल कल्याणकारी संगम युग में ही होती है। इसलिए ये कमाई करने का भी ये संगम युग समय है। चौथा, ये संगम युग बैंक भी है, क्योंकि ये बैंक हमारी केवल संगम युग में ही खुलती है। सारी कल्प में ये बैंक नहीं खुलती, ईश्वरीय बैंक। सारी बैंकें तो कल्प में और युगों में आ जाती है, लेकिन ये ईश्वरीय बैंक केवल संगम युग में ही खुलती है। तो इस बैंक में हमने कितना जमा किया, कमाया, और कमाने के साथ फिर हमने जमा कितना किया। अब जमा कैसे होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम जब बहुत कमा लेते हैं सेवाओं के द्वारा, योग के द्वारा, गुणों के द्वारा, विशेषताओं के द्वारा, जब बहुत कुछ कमा लेते हैं तो कमाने के बाद हम उसको जमा करना भूल जाते हैं। क्या हमें उसे जमा भी करना है, क्या करते हैं उसको रख लेते हैं अपने पास। तो रखे रखे क्या होता है, या तो वो खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं माना वो खत्म हो जाता है। अगर उसको हमने ईश्वरीय बैंक में जमा कर दिया, जमा कैसे कर दिया, बाबा को याद करके ट्रांसफर कर दिया, सारी चीजों को हमने बाबा की याद में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करते गए सेवाएं की, ट्रांसफर कर दिया, बाबा ये मैंने नहीं किया, ये आपने कराया। कोई भी सेवाएं हमने की और वो सारी सेवाओं को हम ट्रांसफर करते चले गए तो वो सारा खजाना हमारा क्या होता है, ईश्वरीय बैंक में जमा हो जाता है। तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, समय, श्वास, संकल्प के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा, ये सारी चीजों को हम ईश्वरीय बैंक में कितना जमा करते जाते हैं, तो इनको हमें जमा करना है। तन के द्वारा भी हम, स्थूल सेवाओं के द्वारा भी हम अपना इस ईश्वरीय बैंक में जमा कर सकते हैं। अगर हमारे पास धन नहीं है तो तन के द्वारा भी हम जमा कर सकते हैं, समय के द्वारा भी हम जमा कर सकते हैं। श्रेष्ठ सेवाओं में हम समय देते हैं, तो जब श्रेष्ठ सेवाओं में समय देते हैं तो वो हमारा जमा हो जाता है। तो समय के द्वारा भी हम जमा कर सकते हैं, धन के द्वारा भी जमा कर सकते हैं, लेकिन ये सारा जमा कब होता है, जब हम भावना से करते हैं। कईयों में क्या होता है कि तन के द्वारा सेवाएं करते हैं, कभी कभी हम मजबूरी में करते हैं, हाँ, सेंटर में जाते हैं, वहां पर हम कभी स्थूल सेवाएं करते हैं, बाहर मैदान में जाते हैं, बाहर वहां भी हम सेवा करके आते हैं। तो कभी कभी सेवाएं तो हम कर आते हैं, लेकिन हमारी भावना इतनी नहीं रहती। तो जितनी भावना रहती है उस भावना के आधार से ही हमारा जमा होता जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान ने भक्ति मार्ग में भी भक्तों को भावना का भाड़ा दिया, भावना का भाड़ा दिया, उनका माना जमा किया। तो हम भी कितनी भावना से जमा करते हैं, ये भावना से जमा करने का समय है, यह ईश्वरीय बैंक, इस बैंक में हम अपना सारा कुछ जमा कर सकते हैं। तो अभी भगवान ने ये हमें समय प्रति समय जो ये भाग्य बनाने का चांस दिया है, तो हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। क्योंकि व्यर्थ कैसे जाता है, ये जीवन क्या है, जीवन एक गेंद है और समय मैदान है। जीवन गेंद है और समय मैदान है, और ये खेल कहां से शुरू हुआ, सतयुग से। सतयुग में जीवन रूपी बॉल क्या थी, फुल थी। तो फुल होने के कारण से उसमें कितना उमंग था, कितनी खुशी थी, हर चीजों से भरपूर थे। और जैसे ही हमको खेलने को मिलता था, जिस तरह से मिलता था, तो हम खुशी खुशी उसमें खेलते जाते थे। कष्ट नहीं होता था, किसी प्रकार का दुख नहीं था। इसीलिए कहा भी जाता है स्वर्ग, जहां पर आत्मा एकदम सतोप्रधान, भरपूर माना भरपूर हवा उसके अंदर भरी हुई थी बॉल। तो जब भरपूर बॉल भरी होती है तो जरा सा भी ठोकर मारो तो कितना उछलती है, उछलती है ना। तो उछल उछल के हमने सतयुग और त्रेता में बहुत खेल खेला खेला। अब धीरे धीरे उस बॉल के अंदर जैसे ही द्वापर युग आता है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होती है, हवा क्या होती है, कम होने लगती है। ठीक है, अब जब थोड़ी सी कम होती है तो क्या होता है, थोड़ा उछलना कम हो जाता है, खुशी हमारी कम हो जाती है, है आनंद हमारा कम हो जाता है, शक्तियां हमारी कम हो जाती है। और जब कलयुग में आते हैं तो कलयुग में आकर के पूरी हवा निकल जाती है। ठीक है, तो जैसे पटको भी ना उसको, तो क्या होता है, वहीं पर दम से वहीं गिर जाती है वो बॉल, उछलती नहीं है, उछलती है नहीं, उछलती है। और फिर ये मैदान भी धीरे धीरे द्वापर में क्या होता है, सतयुग में समय रूपी मैदान, मैदान भी बहुत अच्छा था, प्रकृति सतोप्रधान थी, हर प्रकार के हमको सुविधाएं थी। द्वापर युग से जैसे ही बॉल की हवा कम होती है, तो वैसे ये समय रूपी जो मैदान है इसमें भी कमियां आना चालू हो जाती है, प्रकृति भी थोड़ा थोड़ा दुख देना चालू कर देती है। और कलयुग में आकर के ये समय क्या हो गया, समय रूपी मैदान, जब बॉल की हवा ही निकल गई तो ये मैदान की भी हालत खराब हो गई। क्या हालत खराब हो गई मैदान की, व्यर्थ संकल्पों की झाड़ियां आ गईं। क्या आ गया, हमारा समय कैसे बीत रहा है, व्यर्थ संकल्पों की झाड़ियां इकट्ठी हो गई और इसमें रोड़े आ गए, अहम बहम अभिमान अपमान, ये कितने बड़े बड़े रोड़े भी आ गए इसी में। अब इन रोड़ों से जब जीवन टकराती है तो बॉल धीरे धीरे क्या होती, पंचर भी होने लगती है। क्या हो जाती है, जब ठोकर लगती है तो बॉल धीरे धीरे क्या होती है, पंचर ही हो जाती है। फिर उसमें कितना भी हवा भरो तो क्या होगा, निकली हुई है ना। तो देखो ना, जैसे कलयुग में अभी देखते हैं लोगों को जब समझाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, हमारे में ताकत ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। अपनी बैग में जाओ अगर आप लाइफ में, तो क्या था पहले, यही था ना कि अरे जी रहे, जीवन चल रहा है, कैसे भी जीवन काट रहे हैं, किसी से पूछो क्या हाल है, कट रही है। जवाब क्या होता था, कट रही है, चल रही है, काट रहे हैं जीवन को। तो क्यों ऐसा था, क्योंकि पंचर लाइफ है, लोग कहते ना ये पंचर लाइफ हो गई। तो पंचर लाइफ में अगर हम उनको फोर्स भी भरते हैं, साधु संतों ने फोर्स भरा है, सारे महात्माओं ने, महान संतों ने फोर्स भी भरा, लेकिन पंचर है। तो जब तक पंचर ठीक नहीं होता है तब तक उसमें हवा जाएगी, जाएगी हवा, हवा नहीं जा सकती है। ठीक है, अब वो बॉल एकदम बेकार हो गई, खेलने के लायक ही नहीं रह गई। जब ऐसा समय आया तो फिर हम क्या सोचते हैं कि इस बॉल को फिर से फूलना चाहिए, फूलना चाहिए ना। तो हमें परमात्मा बाबा सर्वशक्तिवान, ऐसा सर्वशक्तिवान परमात्मा हमको मिला जो हमारे अंदर ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से हवा भरने का काम चालू करा दिया। और क्या कहा, पंचर ठीक करने के लिए क्या कहा कि व्यर्थ संकल्पों से जो बार बार टकराते हो, हम योग करते हैं, साधना करते हैं, है, सेवाएं करते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्पों की झाड़ियों से बार बार ब्राह्मण जीवन टकराता रहता है। तो जो शक्ति भरना चाहिए वो भर पाती है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है, हम संतुष्ट है, हाथ उठाएंगे जो कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है। बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। हाँ, तो ये क्यों हो जाता है ऐसा, हम अपने पुरुषार्थ से स्वयं संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अहम और बहम के रोड़े से भी टकराते, अभिमान अपमान से भी ये लाइफ हमारी, गेंद हमारी टकरा जाती, झाड़ियों से भी टकराते रहते। इधर बाबा हमको फोर्स भरता रहता, हवा भरता रहता है, भरते। और हवा क्या भरते, प्रतिदिन अमृत वेले हमारी सबसे पहले शक्तियों से हवा भरता, प्रतिदिन हवा भरते। और दूसरी हवा कहां से भरते, श्रीमत रूपी ये मुरली। तो हम क्या प्रतिदिन अमृत वेले हवा भरते माना शक्तियां भरते, और प्रतिदिन हम मुरली सुनते हैं प्रतिदिन बाबा की मुरली को हम सुनते हैं, ठीक है। अब बाबा की मुरली भी सुनते हैं, प्रतिदिन योग भी करते हैं, सेवाओं पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन दो तीन बातों पर ध्यान हमारा नहीं जाता। व्यर्थ बोल के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, समय निकल जाता। व्यर्थ बातें सुनने में हमारा ध्यान नहीं जाता, समय निकल जाता। तो ऐसा नहीं कि आप कमाई नहीं करते हो, हम सब कमाई तो करते हैं, लेकिन कमाई करने के साथ साथ ये गवाही भी हो जाती है, बीच बीच में हवा निकलती रहती है। इसलिए हमें इन पंचर को ठीक करना है। ये जो बीच बीच में पंचर हो गया है बॉल में, तो हमें इसको ठीक करना है। और ठीक करके हमें टकराना नहीं है, क्योंकि जीवन हमारी क्या हो गई, कमजोर हो गई है। शक्ति ना होने के कारण से ये बॉल कमजोर हो गई है, और कमजोरी में अगर इससे टकराते हैं तो तुरंत ही पंचर हो जाता, सारी शक्ति चली जाती है हमारी, फिर चली जाती है। तो इसलिए अगर फुल हवा चाहिए, फुल शक्ति चाहिए, तो फुल शक्ति के लिए हमें इन सब चीजों से क्या करना है, अपने आप को बचाना है, अटेंशन देना है, क्योंकि यही समय है जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, ठीक। अब ये संगम युग में बाबा ने हमको ये भी चांस दिया है कि ये जीवन रूपी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी हमारी क्या हो गई, पुरानी हो गई है। जब बिल्डिंग पुरानी होती है तो उसको नया बनाना पड़ता है नया, तो गिरा के तो नहीं बना सकते, मर के तो नहीं बना सकते। इसी जीवन में ही पुरानी बिल्डिंग को सुंदर बनाना है, इसी जीवन में बनाना है। तो ये पुरानी बिल्डिंग को बिना तोड़ फोड़ के नया बनाना है, तो नया बनाने के लिए क्या करेंगे, पुरानी बिल्डिंग के लिए सबसे पहले जब बिल्डिंग की सफाई करते हैं, तो बिल्डिंग की सफाई में सबसे पहले क्या करते हैं, माताएं ज्यादा जानती है, क्योंकि माताएं सफाई ज्यादा करती है। तो जब मकान की सफाई करते हैं, तो मकान की सफाई करने में सबसे पहले शुरुआत हम कहां से करते हैं, जाले छुड़ाते हैं, एकदम झाड़ू लगाना नहीं चालू करते, जाले छुड़ाने का काम करते हैं ना। जाला कैसे बनता है पता है ना आपको, कि मकड़ी अपने ही लार से जाला बनाती है और उसी में वो फंस जाती है मर जाती। तो सबसे पहले हम जाले छुड़ाते हैं, ठीक। जाले छुड़ाने के बाद झाड़ू लगाने का काम चलता है, झाड़ू लगाने के बाद उसकी पुताई का काम चलता है, पुताई के बाद उसमें कलर करते हैं, तो बिल्डिंग कैसी लगने लगी, सुंदर लगने लगी ना। तो ये जीवन रूपी बिल्डिंग भी ऐसी साफ होती है। ये जीवन रूपी बिल्डिंग को साफ करने के लिए भी बाबा ने यही तरीका हमको सिखाया है कि इस जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो तो सबसे पहले जो अपने अंदर खुद ही व्यर्थ संकल्प के जाले बनाते हैं मकड़ी बनकर, खुद ही अंदर से निगेटिव थॉट, जो हमारे अंदर निगेटिव थॉट चलते हैं ना, व्यर्थ संकल्प, बहुत प्रकार के संकल्प होते हैं निगेटिव, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो कहीं ऐसा तो नहीं करता, वो कहीं ऐसे तो नहीं करता, वो हमको देगा समय कि नहीं देगा, वो हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, बहुत सारी बातों में व्यर्थ संकल्प का जाला हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। और जब बहुत सारी बातों में व्यर्थ संकल्पों का जाला तैयार कर लिया तो अभी हम अंदर अंदर खुद ही घुटते हैं, कोई दूसरा नहीं घुटता। जैसे वो मकड़ी खुद ही घुटती है तो हम ही खुद ही अंदर अंदर घुटते रहते हैं, अंदर अंदर परेशान होते रहते हैं। इसलिए हमें इस जीवन को श्रेष्ठ अगर बनाना है, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण जीवन मिल गई, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन को प्राप्त करके अगर भाग्य बनाना है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो क्या करना है, हमें व्यर्थ संकल्पों के जाल से परहेज करना है। ये सबसे बड़ी बीमारी आज दुनिया में भी फैली हुई है और हमारे ब्राह्मण परिवार के अंदर भी ये बीमारी फैली हुई है। पुरुषार्थ में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, सबसे बड़ा ब्रेकर क्या है, यही जो व्यर्थ संकल्प हमारे अंदर ज्यादा चल जाते हैं। तो ये जो जाल बनाते हैं, तो इस जाल को पहले हमें क्या करना है, बनाना बंद करना है, माना इसको साफ करना है, खत्म करना है। जब व्यर्थ संकल्पों के जाल खत्म होंगे तो जीवन में जो पहले की गंदगी आई हुई है, तो पहले की गंदगी, क्योंकि जाल वर्तमान है, बनता ही रहता है, जाल भविष्य नहीं है, जाल व्यर्थ संकल्पों का जाल वर्तमान है, ये भविष्य नहीं है। और जो पीछे का जो विकर्म है वो क्या है हमारा, वो पीछे का चला जाता, भूतकाल में चला जाता, तो उसे हमें ज्ञान की झाड़ू से साफ करना है, ज्ञान की झाड़ू से, ठीक। और जितना इसको ज्ञान की झाड़ू से हम साफ करते जाएंगे, इधर व्यर्थ संकल्पों का जाल बनना बंद हो गया है और इधर ज्ञान की झाड़ू से सफाई होना चालू हो गई है, और इधर हमने योग साधना से जो पीछे के जो पाप भी बहुत बन गए, स्पॉट पाप, तो इस पाप को भी हम योग की साधना से पुताई करते जाते, माना खत्म करते जाते, ठीक। और दिव्य गुणों की धारणा है कलर, दिव्य गुणों से अपने जीवन को सजाते जाते हैं, ठीक है। तो दिव्य गुण क्या है, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, संपन्नता, धैर्यता, ये सारे डिवाइन वर्च्यूज है ना, दिव्य गुण है ना, तो इन दिव्य गुणों को धारण करते तो बिल्डिंग कैसी हो जाएगी, कलर हो गया ना, दिव्य गुणों से कलर हो गया, योग से पुताई हो गई, ज्ञान से सफाई हो गई और व्यर्थ संकल्पों का हमने जाल बनाना खत्म कर दिया, तो जीवन बिल्डिंग कैसी हो गई, कैसी हो गई आपकी बिल्डिंग, अच्छी बन जाएगी ना। इसलिए बाबा ने जो हमें समय प्रति समय जो टिप्स दिए हैं कि समय की नजाकत को हमें समझना है कि कहीं ये समय हमारे हाथ से निकल ना जाए। ये संगम युग, इतना अच्छा संगम युग हमको मिला है और इस संगम युग में हमको बनकर बिगड़ना नहीं है, बन तो गए, अब बनकर बिगड़ना नहीं है, क्योंकि कारीगर के हाथ में आ गए हैं। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी जब जमीन सड़क में पड़ी रहती है, मिट्टी रहती है, तो सारे लोग उसको रौंद रौंद कर चलते रहते हैं, सारे लोग उस मिट्टी को रौंदते रहते, पैरों से कुचलते रहते हैं, लेकिन जब कारीगर की नजर पहुंचती है, कुम्हार की नजर पहुंचती है, तो उस मिट्टी को वो उठा लेता है, उठा लेता है और उस मिट्टी को उठाकर सीधे कहां रखता है, अपने सिर में रख लेता है, और सिर में रख करके उस मिट्टी को सीधे अपने घर में ले जाता है, घर में। लेकिन वो कुम्हार है ना, कुमार को चैन नहीं पड़ती है, कुमार को चैन नहीं पड़ती है। उस मिट्टी को क्या करता है वो, घड़ा बनाने के लिए उस मिट्टी को वहां से तो प्यार से ले गया, लेकिन वहां से प्यार से ले जाने के बाद उसने घर में पटक दिया और पटकने के बाद उसमें डंडे बरसाने चालू कर दिए, मिट्टी को पीटना चालू कर दिया। पीटा, मिट्टी को कितना पीटते हैं, हाँ, तो मिट्टी को पीटना चालू कर दिया, वहां से सिर में उठा के ले आया। और जब यहां पर आया तो उसने पीटना चालू कर दिया, और ऐसे नहीं पीटा, पानी डाल डाल करके पीटना चालू कर दिया, पानी डाल डाल करके। और जब वो पीटने लगा तो उसके मन में ख्याल आया कि मैं कारीगर के हाथ में पहुंच गया हूं, इसलिए मुझे बनकर बिगड़ना नहीं है, क्योंकि मैं कारीगर के हाथ में पहुंच चुका हूं। फिर उस कुम्हार को चैन नहीं पड़ती है, उस कुम्हार ने पीट पीट करके जब मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो गई, क्योंकि जब तक मिट्टी सॉफ्ट नहीं होगी तो घड़ा बनेगा, बन नहीं सकता। तो उस मिट्टी को उसने जब सॉफ्ट कर लिया तो सॉफ्ट करके उस मिट्टी को उसने चाक में रख दिया, घुमा दिया उसने, और घुमाने के समय भी वो क्या करता रहा, अंदर से तो वो हाथ लगाकर उसने रखा, लेकिन पीछे से वो बाहर से वो ठोकता गया, उसको चैन नहीं है, बाहर से वो ठोकता ही रहा, अंदर से भले उसने हाथ लगाया लेकिन बाहर से वो ठोकता रहा। फिर कुम्हार को चैन नहीं, जब घड़ा बनकर तैयार हो गया तो कुम्हार ने क्या किया, 3 दिन तक उस घड़े को धूप में डाल दिया, और जब धूप में 3 दिन तक वो पड़ा तो उसके मन में फिर संकल्प आया कि मैं कारीगर के हाथ में हूं, इसलिए मुझे बनकर बिगड़ना नहीं है। उसने क्या किया, वो सहता गया, और 3 दिन के बाद कुम्हार को चैन नहीं है, उसने उस घड़े को आग में डाल दिया। अब जब आग में पड़ा तपने लगा तब भी उसने यही सोचा कि मुझे बनकर बिगड़ना नहीं है, फिर भी कुम्हार को चैन नहीं है। उसने 3 दिन के बाद जब घर उसे आग से निकाला तो 3 दिन के बाद वो पक गया, और पकने के बाद उस घड़े को उसने छाया में रख दिया। छाया में रखने के बाद उस घड़े की कीमत बन गई, समझ रहे, कीमत बन गई। जो भगवान की मत मिली उससे हमारी क्या बन गई, उस घड़े की कीमत बन गई। और वो उसमें कुम्हार ने क्या किया कि कलर करना चालू कर दिया, कलर करके जब उसकी कीमत बन गई तो वो घड़ा किस योग्य बन गया। पहले जब वो मिट्टी था तो पानी पी लेता था, खुद ही सोख करके खत्म करता था, अब जब घड़ा पककर तैयार हो गया तो अब वो घड़ा खुद पानी नहीं पीता, अब वो घड़ा क्या करता है, बहुतों की प्यास बुझाने का कार्य शुरू कर दिया, और बहुतों की प्यास ऐसे नहीं बुझाई, ठंडा जल बना करके बहुतों की प्यास बुझाना चालू कर दिया। कैसे कर दिया उसने चालू, क्योंकि हर वक्त वो यही सोचता रहा कि मुझे बनकर बिगड़ना नहीं है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को, बाबा हमारा क्या है, बाबा की नजर भी, हम पहले क्या थे, मिट्टी तो थे, किस काम के थे, थे कोई काम के, मिट्टी ही थे, लेकिन भगवान की नजर हम आत्माओं पर पड़ी। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू रौंदत है मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। तो जब कुम्हार मना भगवान की नजर हम पर पड़ गई तो उसने क्या बड़ी तारीफ की, बहुत महिमा की, बहुत अच्छे से हमको निकाला, और जब निकल के पुराने होने लग गए थोड़ा, घर में ले आया और घर में ला करके क्या करना शुरू कर दिया, ज्ञान की थपेड़े, ज्ञान से समस्याएं थोड़ी थोड़ी, पेपरों से थोड़े थोड़े पेपर आने लग गए, तो उस पेपर में थोड़ा हम पिटने लगे, और जब पेपर हमारे सामने आने लगे और हम क्या कहते, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब ज्ञान में आ गए तो ज्ञान में आने के बाद बहुत पेपर आ रहे हैं, पहले इतने पेपर नहीं आते थे, अभी बहुत पेपर आ रहे हैं। तो ये पेपर नहीं है, क्या है ये? सॉफ्ट बनाने के लिए, जीवन को सॉफ्ट बनाने के लिए ये क्या हो रहा है? ठुकाई हो रही है ये पेपर से। तो पेपरों से हमको डरना नहीं है, बल्कि ये पेपर ही हमारे को क्या करेंगे, सॉफ्ट बनाएंगे, लाइफ को सॉफ्ट बनाएंगे। और जितना जितना हम सॉफ्ट होते जाते हैं तो हमारा जीवन भी घड़े जैसा बनता चला जाता है। और जब जीवन घड़े जैसा बनता है तो क्या होता है, कई प्रकार के पेपर आने के बाद हमको योग तपस्या पे भी डालते, हाँ साधना भी हम करते, ये सारी चीजें घड़े जैसा चालू हो गया, घड़े की तरह। तो अपने जीवन को हमें घड़े जैसा देखना है कि हम कुम्हार के हाथ में आ गए हैं, कुम्हार ने हमारी जीवन को ले लिया है तो वो बनाकर ही छोड़ेगा, बस हमको फूटना नहीं है, समझ गए? बस हमको फूटना नहीं है, माने भागना नहीं है। फूट नहीं कहते हो, फूट गया, फूट के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक फूट माने भाग गया, तो घड़ा फूटता है और ब्राह्मण जीवन में भागता है। तो हमें कोई पेपर को देख करके भागना नहीं है, बनकर बिगड़ना नहीं है, हमको क्या करना, हम कुम्हार के हाथ में हैं, तो हर वक्त ये याद रखना है कि हम कुम्हार के हाथ में आ गए, माना हम कारीगर भगवान के हाथ में आ गए हैं, इसलिए अब हमको अपने ब्राह्मण जीवन को बनकर अब बिगड़ना नहीं है। साबित घड़े के अंदर तो पानी भर जाता है, लेकिन जो चटका, जो घड़ा चटक जाता है, तो उस चटके हुए घड़े की क्या विशेषता होती है और साबित घड़े की क्या विशेषता होती है, कि साबित घड़ा हमेशा सागर में डूबता है, डुबोया जाता है, ठीक, नदी में, तालाब में, सागर में डुबोते हैं, और जो चटका हुआ घड़ा है वो डूब नहीं सकता। उसमें क्या करते हैं, जो चटका घड़ा होता है उसमें क्या करते हैं, कोयला मिट्टी भरकर रख देते हैं। चटके हुए घड़े में हमने देखा गांव में लोगों के घरों में क्या करते हैं, उस घड़े में राख भर देंगे, कोयला भर देंगे, मिट्टी भर देंगे, ये भरकर रख देते। हमारी जीवन कहीं ऐसी तो नहीं हो रही है? हमारी जीवन भी आ तो गए हम भगवान के हाथ में, कहीं चटका हुआ घड़ा तो नहीं तैयार हो रहा है? हाँ, साबित घड़ा तैयार करना है ना, चटकना नहीं है, बीच में हमको फूटना नहीं है, क्योंकि हम आए हैं कारीगर के हाथ में। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
सोचो क्या ले जाना है, जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना, मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना, वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना, मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कुछ ही पल है पास तेरे, पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे, जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उन सुख सारे, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद पल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, परम पिता को याद।